चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला अध्याय 3 श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा। मैं अपने गुरु तथा भक्ति मार्ग के अन्य सारे उपदेशकों के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सारे वैष्णव श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी समेत छहों गोस्वामियों तथा उनके संगियों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री वास ठाकुर आदि उनके सारे भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात मैं भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी तथा ललिता विशाखा आदि समस्त गोपियों को सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। जगन्नाथपुरी में एक बालक था जो उड़ीसा के निवासी एक ब्राह्मण का पुत्र था, किंतु बाद में उसका पिता नहीं रहा। इस बालक के शारीरिक लक्षण अत्यंत सुंदर थे और उसका आचरण अत्यंत शालीन था। यह बालक नित्य ही श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आता और उन्हें सादर नमस्कार करता। वह श्री चैतन्य महाप्रभु से खुलकर बातें करता, क्योंकि महाप्रभु उसके प्राण स्वरूप थे, किंतु महाप्रभु के साथ इस बालक की घनिष्ठता तथा उसके प्रति महाप्रभु की दया दामोदर पंडित को असहाय हो रही थी। दामोदर पंडित इस ब्राह्मण बालक को महाप्रभु के पास जाने से बार बार मना करते, किंतु वह बालक श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए बिना घर पर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह बालक नित्य ही महाप्रभु के पास आता और वे उसके साथ बहुत स्नेह का व्यवहार करते। यह किसी भी बालक का स्वभाव है कि वह उस व्यक्ति से मिलने जाता है जो उसे स्नेह करता है। यह दामोदर पंडित के लिए असहाय था। वे अत्यधिक दुखी हुए, किंतु वे कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि बालक उनके निषेधों की अनदेखी कर देता। एक दिन जब वह बालक श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आया तो महाप्रभु ने बड़े ही स्नेह के साथ उससे सभी प्रकार के समाचार पूछे। कुछ समय बाद जब वह बालक उठकर चला गया तो दामोदर पंडित, जो यह कह नहीं पा रहे थे, कहने लगे। दामोदर पंडित ने दृष्टता पूर्वक महाप्रभु से कहा, सारे लोग आपको महान शिक्षक कहते हैं, क्योंकि आप अन्यों को उपदेश देते हैं, किंतु अब हम देखेंगे कि आप किस तरह के शिक्षक हैं। आप गोसाई, गुरु या आचार्य के नाम से विख्यात हैं, किंतु अब आपके गुण तथा यश की बात सारे पुरुषोत्तम नगर में व्याप्त होगी। आपके पद को कैसा धक्का लगेगा। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि दामोदर पंडित शुद्ध तथा सरल भक्त थे, किंतु यह प्रगल्भ बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, हे दामोदर, तुम यह क्या ऊट पटांग बात कर रहे हो? दामोदर पंडित ने उत्तर दिया, आप तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं, समस्त आलोचनाओं के परे हैं। हे प्रभु, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, आपको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी संपूर्ण संसार बातूनी है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं? हे प्रभु, आप विद्वान शिक्षक हैं, आप यह विचार क्यों नहीं करते कि यह बालक एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है? आप इसके प्रति इतने स्नेहिल क्यों हैं? यद्यपि इस बालक की माता पूर्णतया तपस्विनी तथा सती है, किंतु उसमें एक सहज दोष है कि वह अत्यंत सुंदर युवती है। और हे प्रभु, आप सुंदर आकर्षक तरुण व्यक्ति हैं, अतएव निश्चित रूप से लोग आपके बारे में कानाफूसी करेंगे। आप उन्हें ऐसा अवसर क्यों प्रदान करें? यह कहकर दामोदर पंडित मौन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतर में प्रसन्न होकर मुस्काए और दामोदर पंडित की दृष्टता पर विचार करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, यह दृष्टता मेरे प्रति शुद्ध प्रेम का संकेत भी है। दामोदर पंडित जैसा मेरा कोई अन्य घनिष्ठ मित्र नहीं है। इस तरह सोचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु दोपहर के कृत्य संपन्न करने चले गए। अगले दिन उन्होंने दामोदर पंडित को एकांत में बुलाया। महाप्रभु ने कहा, हे मित्र दामोदर, अच्छा होगा कि तुम नदिया जाओ और मेरी माता के साथ रहो। मैं तुम्हारे अतिरिक्त उसका कोई दूसरा रक्षक नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि तुम इतने सतर्क रहते हो कि तुम मुझे भी सावधान कर सकते हो। तुम मेरे संगियों में सर्वाधिक निष्पक्ष हो। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निष्पक्ष हुए बिना मनुष्य धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। जो मैं नहीं कर सकता, वह तुम कर सकते हो। निसंदेह तुम मुझे भी दंडित कर सकते हो, अन्यों की बात जाने दो। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि तुम मेरी माता के चरण कमलों की शरण में जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक आचरण नहीं कर सकेगा। बीच बीच में तुम यहाँ मुझे देखने आ सकते हो और शीघ्र ही फिर से वहाँ जा सकते हो। मेरी माता से मेरा कोटि कोटि नमस्कार कहना। कृपा करके उनसे यहाँ के मेरे सुख के विषय में कहना और इस तरह उन्हें सुख पहुँचाना। उनसे कहना कि मैंने अपने निजी कार्यकलापों की सूचना देने के लिए तुम्हें भेजा है, जिससे वे मेरे सुख में भाग ले सकें। इस तरह बोलकर माता शची के मन को तुष्ट करना, उन्हें मेरे इस संदेश के साथ एक अत्यंत गोपनीय घटना के संबंध में स्मरण दिलाना। मैं आपके घर आपके द्वारा अर्पण की जाने वाली उन सारी मिठाइयों तथा तरकारियों को खाने के लिए बारंबार आता हूँ। आप जानती हो कि मैं आता हूँ और भोजन करता हूँ। किंतु बाह्य विरह के कारण आप इसे स्वप्न मानती हो। पिछले माघ संक्रांति उत्सव के समय आपने मेरे लिए अनेक प्रकार की सब्जियां, गाढ़ा दूध, रोटियां तथा खीर बनाई थी। आपने भगवान कृष्ण को भोजन अर्पित किया और अभी तुम ध्यान में ही थी कि मैं सहसा प्रकट हुआ और आपकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं वहां अत्यंत हड़बड़ी में गया और सब कुछ खा गया। जब आपने मुझे खाते देखा तो आपको महान सुख का अनुभव हुआ। जब आपने अपनी आंखें पोंछ डाली तो क्षण भर में तुमने देखा कि तुमने जो कुछ मुझे पत्तल में दिया था वह खाली है। तब तुमने सोचा मैंने सपना देखा कि मानो निमाई सब कुछ खा रहा है। बाह्य विरह की दशा में आप यह सोचकर पुनः ब्रह्म में थी कि आपने वह भोजन भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया है। तब आप भोजन पकाने के बर्तन देखने गई और देखा कि हर बर्तन भोजन से भरा है। अतएव आपने भोग लगाने के स्थान को साफ करके फिर से भोग लगाया। इस तरह आपके द्वारा पेट की जाने वाली हर वस्तु मैं पुनः पुनः खाता हूँ, क्योंकि मैं आपके शुद्ध प्रेम द्वारा आकृष्ट होता हूँ। एकमात्र आपके आदेश से मैं नीलाचल जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ। फिर भी आप मेरे प्रति अपने गहन प्रेम के कारण मुझे अपने निकट खींचती रहती हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर पंडित से कहा, मेरी माता को इस तरह से बारंबार स्मरण कराना और मेरा नाम लेकर उनके चरण कमलों की पूजा करना। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह आदेश दिया कि भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाने वाले तरह तरह के प्रसाद लाए जाएं। तब महाप्रभु ने उसे अलग अलग बंदा प्रसाद विभिन्न वैष्णवों तथा अपनी माता को देने के लिए दिया। इस तरह दामोदर पंडित नदिया नवद्वीप गए। माता शची से मिलने के बाद वे उनके चरण कमलों के संरक्षण में रहे। उन्होंने सारा प्रसाद अद्वैत आचार्य जैसे महान वैष्णवों को दे दिया। इस तरह वे वहां रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार व्यवहार करते रहे। सभी जानते थे कि दामोदर पंडित व्यवहारिक बर्ताव में अत्यंत कठोर हैं। अब ऐसे सारे लोग उनसे भयभीत थे और स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने का साहस नहीं करते थे। दामोदर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के हर भक्त को जिसे वे उचित आचरण से थोड़ा भी विचलित हुआ पाते मौखिक रूप से दंड देते। इस तरह उन्होंने आदर्श शिष्टाचार स्थापित किया। इस तरह मैंने दामोदर पंडित के शाब्दिक दंड का वर्णन किया है। जब कोई इसके विषय में सुनता है तो नास्तिक सिद्धांत तथा अज्ञान भाग जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं करोड़ों समुद्रों से भी अधिक गहरी हैं। अतएव कोई नहीं समझ सकता कि वे क्या करते हैं अथवा क्यों ऐसा करते हैं। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का गहन अर्थ नहीं जानता। मैं यथा संभव उनकी बाह्य व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा की तरह हरिदास ठाकुर से मिले और विचार विमर्श के दौरान उन्होंने यह पूछा, हे हरिदास ठाकुर, इस कलयुग में अधिकांश लोग वैदिक संस्कृति से विहीन हैं, अतः वे यवन कहलाते हैं। वे केवल गौवों तथा ब्राह्मण संस्कृति की हत्या करने में ही लगे रहते हैं। इस तरह ये सभी यवन पाप कर्मों में लगे रहते हैं। इन यवनों का उद्धार किस तरह होगा? मुझे महान दुख है कि मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रिय प्रभु, आप चिंता न करें। आप भौतिक संसार में यवनों की दशा देखकर दुखी न हो, क्योंकि सारे यवन हा राम कहने के अभ्यस्त हैं। इसलिए वे इस नामाभास द्वारा सरलता पूर्वक उभार लिए जाएंगे। एक वक्त अत्यधिक प्रेम वश पुकारता है, हे मेरे भगवान रामचंद्र, हे मेरे भगवान रामचंद्र, किंतु यवन भी जप करते हैं, हा राम, जरा उनका सौभाग्य तो देखें। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने, जो कि नाम कीर्तन के प्रामाणिक आचार्य हैं, कहा, भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत करना नामाभास का उदाहरण है। जब नाम का इस तरह से उच्चारण किया जाता है तो भी उसकी दिव्य शक्ति विनष्ट नहीं होती। सूअर के दांत से मारा जा रहा और व्यथित होकर बारंबार हा राम चिल्लाने वाला मलेच्छ भी मुक्ति प्राप्त करता है, तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो आदर तथा श्रद्धा से पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। अजामिल जीवन भर महान पापी था, किंतु अपनी मृत्यु के समय उसने अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारा, जिसका नाम नारायण था, तो विष्णु के दूत यमराज के बंधन से उसे छुड़ाने आ गए। राम शब्द में दो अक्षर रा तथा म हैं, ये विलग नहीं किए जा सकते, और प्रेमवाची शब्द हा से अलंकृत हैं, जिसका अर्थ है हे। पवित्र नाम के अक्षरों की इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि अनुचित ढंग से बोले जाने पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, अथवा यह उसके मन में या श्रवण करने के माध्यम रूपी कान में प्रवेश करता है, तो यह पवित्र नाम निश्चय ही उसे भव बंधन से उभार लेगा। चाहे नामोच्चारण व्याकरण के अनुसार सही ढंग से किया गया हो या गलत ढंग से किया गया हो, चाहे मिलाकर अथवा अलग अलग खंडों में किया गया हो, इसलिए हे ब्राह्मण, पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है, किंतु यदि कोई पवित्र नाम के उच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति तथा अनुयायियों के लिए अथवा लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर करता है, अर्थात अपराध सहित नामोच्चारण किया जाता है, तो ऐसे उच्चारण से तुरंत वांछित फल नहीं मिलेगा। अतएव भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते समय सावधानी पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा, यदि कोई अपराध रहित होकर अपूर्ण रीति से भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो वह पापमय जीवन के सारे फलों से मुक्त हो सकता है। हे सभी सद्गुणों की स्थान, आप समस्त पावन करने वालों को भी पावन करने वाले उत्तम श्लोक शिरोमणि श्री कृष्ण की पूजा करें। आप श्रद्धायुक्त अविचलित मन से निष्कपट होकर तथा अत्युच्च रीति से उनकी पूजा करें। इस प्रकार उन भगवान की पूजा करें जिनका नाम सूर्य के समान है, क्योंकि जिस तरह सूर्य के किंचित प्रकट होने पर भी रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह कृष्ण के पवित्र नाम का थोड़ा सा भी प्राकट्य अज्ञान के सारे अंधकार को, जो विगत जन्मों में संपन्न बड़े बड़े पापों के कारण हृदय में उत्पन्न होता है, दूर भगा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का क्षीण प्रकाश भी पापमय जीवन के सारे फलों को दूर कर सकता है। मरणासन अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के नाम का उच्चारण किया, फिर भी उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ, तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो श्रद्धा तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। भगवान के पवित्र नाम के तेज की हल्की सी किरणों से भी नामाभास मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसे हम समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में देख सकते हैं। इसका साक्ष्य श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा में मिलता है। जब हरिदास ठाकुर से श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना तो उनके हृदय में सुख बढ़ गया, किंतु स्वभावतः उन्होंने और आगे पूछा। महाप्रभु ने कहा, इस पृथ्वी पर अनेक जीव हैं, कुछ अचर हैं और कुछ चर। वृक्षों, लताओं, कीड़ों तथा अन्य जीवों का क्या होगा? वे कैसे भवबंधन से छूट सकेंगे? हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रिय प्रभु, सारे चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार तो आपकी कृपा से होता है। आपने पहले ही यह कृपा करके उनका उद्धार किया है। आपने उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया है और हर चर या अचर प्राणी ने उसे सुनकर लाभ उठाया है। हे प्रभु, जिन चर प्राणियों ने आपके उच्च संकीर्तन को सुना है वे पहले ही भवबंधन से छूट चुके हैं, और जब वृक्ष जैसे अचर जीव उसे सुनते हैं तो एक प्रतिध्वनि होती है, किंतु वास्तव में यह प्रतिध्वनि नहीं, यह तो अचर जीवों का कीर्तन है। यद्यपि यह अचिंत्य है, किंतु आपकी कृपा से यह सब संभव है। जब आपके अनुयायियों द्वारा विश्व भर में हरे कृष्ण मंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन होता है तो सारे अचर तथा चर जीव भक्तिमय प्रेम में नृत्य करते हैं। हे प्रभु, जब आप झारखंड जंगल से होते हुए वृंदावन जा रहे थे तब जितनी सारी घटनाएं घटी उनका वर्णन आपके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य ने मुझसे किया है। जब आपके भक्त वासुदेव दत्त ने आपके चरण कमलों पर सारे जीवों के उद्धार के लिए निवेदन किया तो आपने वह प्रार्थना स्वीकार कर ली। हे प्रभु, आपने इस संसार के सारे पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए ही भक्त का रूप स्वीकार किया है। आपने हरे कृष्ण महामंत्र के उच्च कीर्तन का प्रचार किया है और इस तरह से सारे चर तथा अचर प्राणियों को भवबंधन से मुक्त किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यदि सारे जीवों को मुक्ति मिल जाए तो सारा ब्रह्मांड जीवों से विहीन हो जाएगा। हरिदास ने कहा, हे प्रभु, जब तक आप इस भौतिक जगत में स्थित हैं, तब तक आप विभिन्न योनियों के समस्त विकसित चर तथा अचर जीवों को वैकुंठ लोक भेजते रहेंगे। तब आप पुनः उन जीवों को जागृत करेंगे जो अब भी विकसित नहीं है और उन्हें कार्यों में लगाएंगे। इस तरह सारे चर तथा अचर जीव अस्तित्व को प्राप्त होंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड पहले की तरह पूरित हो जाएगा। पूर्व काल में जब भगवान रामचंद्र ने यह जगत छोड़ा तो वे अयोध्या के सारे जीवों को अपने साथ लेते गए। तत्पश्चात उन्होंने अयोध्या को पुनः अन्य जीवों से भर दिया। हे प्रभु, आपने इस भौतिक जगत में अवतरित होकर एक योजना प्रारंभ कर दी है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि आप किस तरह कार्य करते हैं। पूर्व काल में जब भगवान कृष्ण वृंदावन में अवतरित हुए तो उन्होंने ब्रह्मांड के सारे जीवों को भौतिक स्थिति से इसी तरह मुक्त कर दिया था। अजन्मा योगेश्वरों के भी ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार करते हैं। भगवान के कार्यकलाप तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा जाए, उनका महिमा गान किया जाए या उनका स्मरण किया जाए तो भी वे अत्यंत गुह्य मुक्ति प्रदान करते हैं जो देवताओं तथा असुरों को विरले ही प्राप्त हो पाती है। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो पहले से भगवान की भक्तिमय सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं। आपने नवद्वीप में अवतरित होकर कृष्ण की ही तरह ब्रह्मांड के सारे जीवों का पहले से ही उद्धार कर दिया है। कोई कह सकता है कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझता है? वह जो भी जान सके जाने, किंतु जहां तक मेरा संबंध है मेरा तो यही निर्णय है। हे प्रिय प्रभु, आपकी लीलाएं अमृत के सागर के समान हैं। मेरे लिए उस सागर की महिमा की कल्पना कर पाना या उसकी एक बूंद तक को समझ पाना भी संभव नहीं है। यह सब सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा, ये तो वास्तव में मेरी गुह्य लीलाएं हैं। हरिदास उन्हें कैसे समझ गया? हरिदास ठाकुर के कथनों से अत्यधिक संतुष्ट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, किंतु बाह्य रूप से इन विषयों पर उन्होंने अधिक विचार विमर्श नहीं किया। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वभाव है। यद्यपि वे अपने ऐश्वर्य को छिपाना चाहते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के समक्ष ऐसा नहीं कर पाते। यह सर्वविदित है। हे प्रभु, भौतिक प्रकृति में हर वस्तु काल देश तथा विचार से सीमित होती है, किंतु आपके गुण अतुलनीय तथा अद्वितीय होने के कारण सदैव ऐसी सीमाओं से परे होते हैं। आप कभी कभी ऐसे गुणों को अपनी शक्ति से छिपा लेते हैं, किंतु तो भी आपके अनन्य भक्त आपको सभी परिस्थितियों में देख सकने में सदा समर्थ होते हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी भक्तों के पास गए और उनसे हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों के बारे में इस प्रकार बतलाने लगे, मानो उनके सैकड़ों मुख हो। श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने भक्तों का गुणगान करने में बड़ी प्रसन्नता होती है और इन भक्तों में हरिदास ठाकुर सर्वोपरि हैं। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुण असंख्य तथा अगाध हैं। कोई उनके एक अंश का वर्णन भले कर ले, किंतु उन सब की गणना कर पाना असंभव है। चैतन्य मंगल में श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने कुछ सीमा तक हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन किया है। हरिदास ठाकुर के सभी गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। अपने आप को पवित्र बनाने के लिए उनके विषय में कोई कुछ कह सकता है? हे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, अब हरिदास ठाकुर के उन गुणों के विषय में थोड़ा सुनो जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार से नहीं किया है। अपना घर छोड़ने के बाद हरिदास ठाकुर कुछ समय तक बेनापोल के जंगल में रहे। हरिदास ठाकुर ने एकांत जंगल में एक कुटिया बनाई। वहां उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया और तुलसी के समक्ष वे प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान के नाम का जप किया करते थे। वे दिन रात निरंतर जप किया करते थे। शारीरिक पालन पोषण के लिए वे एक ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाते। वे आध्यात्मिक रूप से इतने प्रभावशाली थे कि आसपास के सारे लोग उनकी पूजा करते थे। रामचंद्र खान नामक एक व्यक्ति उस जिले का जमींदार था। वह वैष्णवों से द्वेष रखता था, अतः वह बहुत बड़ा नास्तिक था। हरिदास ठाकुर को जिस तरह से सम्मान प्रदान किया जाता था, उसे न कर सकने के कारण रामचंद्र खान ने उनका अपमान करने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाई, किंतु उसे किसी भी उपाय से हरिदास ठाकुर के चरित्र में कोई दोष नहीं मिल सका। अतएव उसने स्थानीय वेश्याएं बुलाई और वह हरिदास की पवित्रता को श्रेयहीन करने की योजना बनाने लगा। रामचंद्र खान ने वेश्याओं से कहा, हरिदास ठाकुर नाम का एक वैरागी है, तुम सब उसे तपस्या के व्रत से विचलित करने की कोई युक्ति निकालो। इन वेश्याओं में से एक आकर्षक युवती को चुना गया। उसने वादा किया, मैं 3 दिनों के भीतर हरिदास ठाकुर के मन को आकृष्ट कर लूंगी। रामचंद्र खान ने उस वेश्या से कहा, मेरा सिपाही तुम्हारे साथ जाएगा, जिससे वह तुम्हें हरिदास ठाकुर के साथ देखते ही तुरंत उसे बंदी बना ले और तुम दोनों को मेरे पास ले आए। वेश्या ने उत्तर दिया, पहले मुझे एक बार उनके साथ संग कर लेने दीजिए, तब दूसरी बार मैं अपने साथ आपके सिपाही को उन्हें बंदी बनाने के लिए ले जाऊंगी। रात में वह वेश्या खूब सज धज कर हरिदास ठाकुर की कुटिया में अत्यंत हर्ष पूर्वक गई। तुलसी के पौधे को नमस्कार करने के बाद वह हरिदास ठाकुर के द्वार पर गई और उन्हें नमस्कार करके वहां खड़ी हो गई। वह उनकी दृष्टि के सामने अपने शरीर को प्रदर्शित करते हुए दरवाजे की देहली पर बैठ गई और उनसे अत्यंत मधुर शब्दों में बोली, हे ठाकुर, हे महान उपदेशक, महान भक्त, आपका शरीर अतीव सुगठित है और आपके यौवन का शुभारंभ अभी हो ही रहा है। आपको देखने के बाद ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने मन को वश में रख सके। मैं आपके संग की इच्छुक हूँ, मेरा मन इसके लिए ललचाया हुआ है। यदि मैं आपको नहीं पाती तो मैं अपने प्राण धारण नहीं कर सकूंगी। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अवश्य अपना लूंगा, किंतु तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक मैं अपनी जप माला में अपने निर्धारित जप समाप्त न कर लूं। उस समय तक कृपया बैठो और पवित्र नाम के जप का श्रवण करो। ज्यो ही मैं नाम जप समाप्त कर लूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर वह वेश्या वहीं बैठी रही और हरिदास ठाकुर बोर होने तक जप माला पर जप करते रहे। जब उस वेश्या ने देखा कि सुबह हो गई तो वह उठी और चली गई। रामचंद्र खान के पास आकर उसने सारे समाचार बतलाए। आज हरिदास ठाकुर ने मेरे साथ भोग करने का वचन दिया है, कल निश्चय ही मेरा उसके साथ संग होगा। अगली रात को जब वह वेश्या फिर से आई तो हरिदास ठाकुर ने उसे अनेक आश्वासन दिए, कल रात को तुम्हें निराश होना पड़ा, कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दो, मैं अवश्य ही तुम्हें स्वीकार करूंगा। कृपया बैठो और तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनो जब तक मेरा नियमित जप पूरा नहीं हो जाता, तब तुम्हारी इच्छा अवश्य मेव पूरी हो जाएगी। तुलसी के पौधे को तथा हरिदास ठाकुर को नमस्कार करके वह द्वार पर बैठ गई। हरिदास ठाकुर को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते सुनकर वह भी हे मेरे प्रभु हरि, हे मेरे प्रभु हरि का उच्चारण करने लगे। जब रात समाप्त हो गई तो वेश्या व्याकुल हो उठी। यह देखकर हरिदास ठाकुर उससे इस तरह बोले, मैंने एक मास में 1 करोड़ नाम जप करने का व्रत ले रखा है, किंतु अब यह समाप्ति पर है। मैंने सोचा था कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जपने का अपना यज्ञ आज समाप्त कर सकूंगा। मैंने सारी रात नाम जप करने का बरकत प्रयास किया, किंतु अब भी उसे समाप्त नहीं कर सका। कल मैं अवश्य ही समाप्त कर लूंगा और मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। तब मेरे लिए संभव हो सकेगा कि पूरी स्वतंत्रता से तुम्हारे साथ रमण कर सकूंगा। वह वेश्या रामचंद्र खान के पास लौट गई और जो कुछ हुआ था उसे बतलाया। अगले दिन वह शीघ्र ही संध्या होते ही आ गई और हरिदास ठाकुर के पास रुकी रही। तुलसी वृक्ष को तथा हरिदास ठाकुर को नमस्कार करने के बाद वह कमरे की दहलीज पर बैठ गई। इस तरह वह हरिदास ठाकुर का कीर्तन सुनने लगी और स्वयं भी उसने हरि हरि अर्थात भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया। हरिदास ठाकुर ने उसे बतलाया, आज मेरा नाम जब पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं तुष्ट करूंगा। जप करते करते रात बीत गई, किंतु हरिदास ठाकुर की संगति के कारण वेश्या का मन बदल चुका था। वह वेश्या अब शुद्ध हो गई थी। वह हरिदास ठाकुर के चरण कमलों पर गिर पड़ी और उसने स्वीकार किया कि रामचंद्र खान ने उन्हें दूषित करने के लिए उसे नियुक्त किया था। उसने कहा, क्योंकि मैंने वेश्या का पेशा अपनाया है, अतएव मैंने असंख्य पाप कर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझ पर कृपालु हो, मुझ पतिता का उद्धार करें। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं रामचंद्र खान के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वह एक निपट अज्ञानी मूर्ख है, इसलिए उसके कार्यों से मैं दुखी नहीं हूँ। जिस दिन रामचंद्र खान मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसी दिन मैंने यह स्थान छोड़ दिया होता, किंतु तुम मेरे पास आई, इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए 3 दिनों तक यहाँ रुका रहा। वेश्या ने कहा, कृपया मेरे आध्यात्मिक गुरु बनिए, मेरे कर्तव्य के बारे में उपदेश दीजिए, जिससे मुझे भौतिक अस्तित्व से छुटकारा मिल सके। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, तुम तुरंत अपने घर जाओ और तुम्हारी जितनी संपत्ति हो उसे ब्राह्मणों में बांट दो। तब इस कुटिया में लौट आओ और सदा के लिए कृष्ण भावना में यहाँ रहो। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और जल से सींच कर तथा स्तुति करके तुलसी की सेवा करो। इस तरह तुम तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने का अवसर प्राप्त कर सकोगी। इस तरह वेश्या को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की विधि के विषय में उपदेश देकर हरिदास ठाकुर उठे और लगातार हरि हरि कीर्तन करते हुए चले गए। तत्पश्चात उस वेश्या ने अपने पास जो भी घरेलू संपत्ति थी उसे अपने गुरु की आज्ञा अनुसार ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। वैष्णव नियमों के अनुसार उस वेश्या ने अपना सिर मुंडा लिया और केवल एक वस्त्र पहने उसी कमरे में रहने लगी। वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर प्रतिदिन 3 लाख नाम का जप करने लगी। वह दिन रात जप करती रहती। वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर तुलसी की पूजा करने लगी। वह नियमित भोजन न खाकर भिक्षा में जो मिलता उसे खाती और यदि कुछ न मिलता तो उपवास करती। इस तरह बहुत कम खाकर तथा उपवास करके उसने इंद्रियों को वश में कर लिया और ज्यों ही उसकी इंद्रियां वश में हो गई त्यों ही उसमें ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। इस तरह वह वेश्या विख्यात भक्तिन बन गई। वह आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नत हो गई और अनेक बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन के लिए आने लगे। वेश्या का उन्नत चरित्र देखकर सारे लोग चकित थे। सारे लोगों ने हरिदास ठाकुर के प्रभाव का गुणगान किया और उन्हें नमस्कार किया। हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए वेश्या को प्रेरित करके रामचंद्र खान ने उनके चरणों में अपराध के बीज को उगने दिया। बाद में यही बीज एक वृक्ष बन गया और जब यह फला तो रामचंद्र खान ने इसके फल खाए। उच्च भक्त के चरणों पर इस अपराध से एक अद्भुत कथा का जन्म हुआ। इन घटनाओं से प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर मैं वह सब बतलाऊंगा जो घटित हुआ। हे भक्तों, इसे सुनो। रामचंद्र खान स्वभावतः अभक्त था। अब हरिदास ठाकुर के चरणों पर अपराध करके वह पूरा आसुरी नास्तिक जैसा बन गया। वैष्णव धर्म की निंदा करने तथा दीर्घ काल तक भक्तों का अपमान करने के कारण अब उसे अपने अपराध कर्मों का फल मिला। जब नित्यानंद प्रभु भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने बंगाल लौट आए तो वे सारे देश में भ्रमण करने लगे। भगवान के सर्वाधिक समर्पित भक्त नित्यानंद प्रभु 2 कार्यों से भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने तथा नास्तिकों को परास्त और दमन करने के उद्देश्य से देश भर में भ्रमण करने लगे। भगवान नित्यानंद जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण सर्वज्ञ हैं, रामचंद्र खान के घर आए और दुर्गा मंडप की वेदी पर बैठ गए। जब दुर्गा मंडप तथा आंगन लोगों की भीड़ से भर गया तो रामचंद्र खान ने घर के भीतर से अपने नौकर को नित्यानंद प्रभु के पास भेजा। उस नौकर ने नित्यानंद प्रभु को सूचित किया, हे महाशय, रामचंद्र खान ने मुझे भेजा है कि मैं आपको किसी सामान्य व्यक्ति के घर में रहने का स्थान दूं। आप किसी ग्वाले के घर जा सकते हैं क्योंकि गौशाला विस्तृत होती है, जबकि यहाँ दुर्गा मंडप में स्थान अपर्याप्त है क्योंकि आपके साथ अनेक अनुयायी हैं। जब नित्यानंद प्रभु ने रामचंद्र खान के नौकर का यह आदेश सुना तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और बाहर आ गए। उच्च स्वर से हंसते हुए वे इस प्रकार बोले, रामचंद्र खान ने ठीक ही कहा है, यह स्थान मेरे लिए अनुपयुक्त है। यह गोवध करने वाले मांसाहारियों के लिए उपयुक्त है। यह कहकर नित्यानंद प्रभु उठे और क्रुद्ध होकर चले गए। रामचंद्र खान को दंड देने के लिए वे उस गांव में भी नहीं रुके। रामचंद्र खान ने नौकर को आज्ञा दी कि जहां पर नित्यानंद प्रभु बैठे थे उस स्थान की मिट्टी खोद डाले, दुर्गा मंडप मंदिर तथा आंगन को शुद्ध करने के लिए रामचंद्र खान ने इन्हें गोबर मिले जल से छिड़काया और लिपवाया, फिर भी उसका मन प्रसन्न न था। रामचंद्र का पेशा आपत्तिजनक था क्योंकि वह सरकार को कर देने से जी चुराता था, इसलिए सरकारी वित्त मंत्री नाराज था और वह उसके घर आया। उस मुसलमान मंत्री ने रामचंद्र खान के दुर्गा मंडप को अपना निवास स्थान बनाया, उसने एक गाय मारी और वहां मांस पकाया। उसने रामचंद्र खान को उसकी पत्नी तथा बच्चों समेत बंदी बना लिया और फिर लगातार 3 दिनों तक उसके घर तथा गांव को लूटा। उसने उसी कमरे में लगातार 3 दिनों तक गोमांस पकाया। तब अगले दिन अपने अनुयायियों सहित वह चला गया। उस मुसलमान मंत्री ने रामचंद्र खान का पद, संपत्ति तथा अनुयायी छीन लिए। कई दिनों तक गांव उजाड़ बना रहा। जहां भी किसी महान भक्त का अपमान किया जाता है, वहां एक व्यक्ति के दोष से सारा गांव या नगर पीड़ित होता है। हरिदास ठाकुर चलते चलते चांदपुर नामक गांव में आए। वहां पर वे बलराम आचार्य के घर पर ठहरे। हिरण्य तथा गोवर्धन उस देश की उस तहसील के 2 सरकारी कोषाध्यक्ष थे। उनके पुरोहित का नाम बलराम आचार्य था। बलराम आचार्य पर हरिदास ठाकुर की कृपा के कारण वह हरिदास ठाकुर से अत्यधिक लगाव रखता था, इसीलिए उसने हरिदास ठाकुर को गांव में अत्यंत यत्न पूर्वक रखा। उस गांव में हरिदास ठाकुर को एकांत पूज की कुटिया दे दी गई थी, जहां वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते थे। वे बलराम आचार्य के घर पर प्रसाद लेते थे। रघुनाथ दास, जो गोवर्धन मजुमदार का पुत्र था और बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी बना, उस समय बालक अवस्था में पढ़ाई कर रहा था। वह नित्य ही हरिदास ठाकुर का दर्शन करने आता था। स्वाभाविक रूप से हरिदास ठाकुर उसके प्रति कृपालु थे और इस वैष्णव के कृपा पूर्ण आशीर्वाद से ही वह बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सका। हिरण्य तथा गोवर्धन के निवास स्थान पर व्याख्यान होते थे, जिनमें हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान होता था। हे भक्तों, उस अद्भुत कथा को सुनो। एक दिन बलराम आचार्य ने अत्यंत दीनता पूर्वक हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की कि वे हिरण्य तथा गोवर्धन मजुमदारों की सभा में चलें। अतः बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर के साथ वहां गए। हरिदास ठाकुर को देखकर दोनों भाई तुरंत उठ खड़े हुए और उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। तत्पश्चात उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उस सभा में अनेक विद्वजन, ब्राह्मण तथा सम्माननीय भद्र पुरुष थे। हिरण्य तथा गोवर्धन ये दोनों भाई भी महान पंडित विद्वान थे। वहां सारे लोग हरिदास ठाकुर के महान गुणों का बखान करने लगे। मानो उनके पांच पांच मुख हो। यह सुनकर दोनों भाई परम सुखी हुए। सभा में इसका उल्लेख किया गया कि हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख कृष्ण नाम का जप करते थे। इस तरह सारे विद्वान पवित्र नाम की महिमा के विषय में विचार विमर्श करने लगे। उनमें से कुछ एक ने कहा, भगवान के पवित्र नाम का जप करने से मनुष्य सारे पापमय जीवन के फलों से मुक्त हो जाता है। अन्यों ने कहा, भगवान के पवित्र नाम के जप मात्र से जीव भव बंधन से छूट जाता है। हरिदास ठाकुर ने आपत्ति की, ये दोनों वर पवित्र नाम के जप के सही फल नहीं है। वास्तव में अपराध रहित नाम जप से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम जागृत होता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के नाम कीर्तन में आनंद लेता है तो वह उत्तेजित हो उठता है और उच्च स्वर से नाम कीर्तन करता है। वह हंसता है, रोता है, चंचल होता है और उन्मत्त की तरह बाहरी लोगों की परवाह किए बिना कीर्तन करता है। मुक्ति तथा पाप फलों का क्षय, ये दो भगवान नाम कीर्तन के साथ मिलने वाले गौण फल हैं। इसका उदाहरण प्रातःकालीन सूर्य प्रकाश के चमकने में पाया जाता है। जिस तरह उदय होता हुआ सूर्य तुरंत ही समुद्र जैसे अगाध जगत के सारे अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह भगवान के पवित्र नाम यदि एक बार अपराध रहित होकर उच्चारण किया जाए तो जीव के पापी जीवन के सारे पाप फलों को दूर कर देता है। उस भगवान के पवित्र नाम की जय हो जो सारे जगत के लिए मंगलकारी है। इस श्लोक को सुनाकर हरिदास ठाकुर ने कहा, हे विद्वानों, जरा इस श्लोक का अर्थ बतलाओ। किंतु श्रोताओं ने हरिदास ठाकुर से अनुरोध किया, अच्छा यही होगा कि आप ही इस महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ बतलाएं। हरिदास ठाकुर ने कहा, जब सूर्य का उदय होने लगता है तो उसके दृश्यमान होने के पूर्व ही वह रात के अंधकार को दूर कर देता है। सूर्य प्रकाश के प्रथम दर्शन होते ही चोरों, प्रेतों तथा असुरों का भय तुरंत चला जाता है और जब सूर्य वास्तव में दिखता है तो हर वस्तु प्रकट हो जाती है और हर व्यक्ति अपने धार्मिक कार्य तथा नियमित कर्तव्य करना प्रारंभ कर देता है। इसी तरह यह प्रथम संकेत कि भगवान के पवित्र नाम का निरपराध जप जागृत हो चुका है, तुरंत पापमय जीवन के फलों का क्षय कर देता है और जब कोई निरपराध होकर नाम का जप करता है तो उसमें कृष्ण के चरण कमलों पर प्रेम भाव युक्त सेवा जागृत हो जाती है। मुक्ति तो भगवान के पवित्र नाम के अपराध रहित जप की जागृति के आभास से प्राप्त होने वाला एक नगण्य फल है। मृत्यु के समय अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, फिर भी उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ, तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो श्रद्धा तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। जो मुक्ति शुद्ध भक्त को स्वीकार नहीं है वह कृष्ण द्वारा सदा बिना किसी कठिनाई के प्रदान की जाती है। यदि मैं सालोक्य, सारिष्टि, सारूप्य, सामीप्य या एकत्व इन मुक्तियों को अपने भक्तों को प्रदान भी करूं, तो वे मेरी सेवा की तुलना में इन्हें स्वीकार नहीं करते। हिरण्य तथा गोवर्धन मजुमदार के घर पर गोपाल चक्रवर्ती नामक एक व्यक्ति सरकारी मुख्य कर संग्राहक था। यह गोपाल चक्रवर्ती बंगाल में रहता था। कर संग्राहक के रूप में उसका काम था 12 लाख मुद्राएं एकत्र करके शाही खजाने में जमा करना। उसका शरीर सुंदर था और वह पंडित तथा युवावस्था को प्राप्त था, किंतु वह इस कथन को सहन नहीं कर पाया कि मात्र नामाभास से भगवान के पवित्र नाम के शुद्ध उच्चारण की झलक मात्र से कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह युवक गोपाल चक्रवर्ती हरिदास ठाकुर के कथन सुनकर अत्यधिक कुपित हुआ। उसने तुरंत उनकी आलोचना की। हे विद्वजनों, जरा इस भावुक भक्त का निष्कर्ष तो सुनो। करोड़ों जन्मों के बाद जब कोई मनुष्य परम ज्ञान में पूर्ण हो जाता है तब भी उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। फिर भी यह व्यक्ति कहता है कि उस मुक्ति को केवल नामाभास से प्राप्त किया जा सकता है। हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम संदेह क्यों कर रहे हो? प्रामाणिक शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य मात्र नामाभास से, पवित्र नाम की झलक मात्र से मुक्ति पा सकता है। जो भक्त भक्ति के दिव्य आनंद का भोग करता है उसके लिए मुक्ति अतीव नगण्य है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी मुक्ति पाने की अभिलाषा नहीं रखते। हे प्रिय प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, क्योंकि मैंने आपका प्रत्यक्ष दर्शन किया है इसलिए मेरे दिव्य आनंद ने महासागर का रूप धारण कर लिया है। अब उस सागर में स्थित होने से मैं अनुभव करता हूँ कि ब्रह्मानंद समेत अन्य समस्त तथा कथित सुख गाय के खुर के चिन्ह में भरे हुए जल के समान है। गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि कोई मात्र नामाभास से मुक्त न हो सके तो आप इसे निश्चय ही जान ले कि मैं आपकी नाक काट लूंगा। तब हरिदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, यदि नामाभास से मुक्ति प्राप्त न हो सके तो निश्चित रूप से मैं अपनी नाक काट दूंगा। सभा के सारे सदस्य जिन्होंने चुनौती सुनी वे अत्यधिक क्षुब्ध हो गए। वे हाहाकार करते हुए उठ खड़े हुए। हिरण्य तथा गोवर्धन मजुमदार दोनों ने ही उस ब्राह्मण कर संग्राहक को तुरंत डांटा। बलराम आचार्य नामक पुरोहित ने भी गोपाल चक्रवर्ती को डांटा। उसने कहा, तुम मूर्ख तर्कवादी हो, तुम भगवत भक्ति के बारे में क्या जानो? तुमने हरिदास ठाकुर का अपमान किया है इसलिए तुम्हारे लिए भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। तुम्हें किसी शुभ फल की आशा नहीं करनी चाहिए। तब हरिदास ठाकुर जाने के लिए उठे और गोपाल चक्रवर्ती के स्वामी दोनों मजुमदारों ने तुरंत ही गोपाल चक्रवर्ती को अपनी नौकरी से हटा दिया। दोनों मजुमदार सभा के सारे सदस्यों सहित हरिदास ठाकुर के चरण कमलों पर गिर पड़े, किंतु हरिदास ठाकुर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मीठी वाणी में कहा, तुम सब का कोई दोष नहीं है। निसंदेह इस अज्ञानी तथा कथित ब्राह्मण का भी दोष नहीं है, क्योंकि वह शुष्क चिंतन तथा तर्क का अभ्यस्त है। कोई व्यक्ति मात्र तर्क वितर्क से पवित्र नाम की महिमा को नहीं समझ सकता, इसलिए यह व्यक्ति संभवतः नाम की महिमा को नहीं समझ सका। अब आप सभी अपने अपने घर जाएं। भगवान कृष्ण आप सबको आशीर्वाद दें। मेरे अपमानित होने के कारण आप दुखी न हो। जब हिरण्यदास मजुमदार अपने घर लौट आया और उसने आदेश दिया कि गोपाल चक्रवर्ती घर के भीतर नहीं जा सकता, 3 दिनों के भीतर उस ब्राह्मण को कोढ़ हो गया, जिसके फल स्वरूप उसकी उठी हुई नाक गलकर गिर पड़ी। उस ब्राह्मण के हाथ तथा पांव की अंगुलियां सुनहरे रंग के चंपक की कलियों के समान सुंदर थी, किंतु कोढ़ के कारण वे सब मुरझा गई और धीरे धीरे गल गई। गोपाल चक्रवर्ती की दशा देखकर सारे लोग चकित थे। सब ने हरिदास ठाकुर के प्रभाव की प्रशंसा की और उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि वैष्णव के रूप में हरिदास ठाकुर ने ब्राह्मण के अपराध को गंभीरता के साथ नहीं लिया, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसे सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ब्राह्मण को यह फल भोगने के लिए बाध्य किया। यह शुद्ध भक्त का गुण है कि वह अज्ञानी दुष्ट द्वारा किए गए किसी भी अपराध को क्षमा कर देता है, किंतु कृष्ण का गुण यह है कि वे अपने भक्तों की निंदा नहीं सहन कर पाते। जब हरिदास ठाकुर ने सुना कि ब्राह्मण गोपाल चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया है, तो वे दुखी हुए। तत्पश्चात हिरण्य मजुमदार के पुरोहित बलराम आचार्य को बतला कर वे अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर चले गए। अद्वैत आचार्य से मिलकर हरिदास ठाकुर ने सादर दंडवत प्रणाम किया। अद्वैत आचार्य ने बदले में उनका आलिंगन किया और सम्मान दिखलाया। अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर के लिए गंगा के तट पर एकांत स्थान में एक गुफा जैसा घर बनवा दिया और भक्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता का वास्तविक अर्थ उन्हें बताया। हरिदास ठाकुर नित्य प्रति अद्वैत आचार्य के घर पर भोजन करते। वे दोनों मिलकर कृष्ण विषयक चर्चाओं का अमृत आस्वादन करते। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे अद्वैत आचार्य, मैं आपके समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप प्रतिदिन मुझे खाने के लिए भोजन की भिक्षा देते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? हे महोदय, आप बड़े बड़े ब्राह्मणों तथा कुलीनों के समाज में रह रहे हैं, किंतु बिना भय या लज्जा के आप मुझ जैसे निम्न जाति के व्यक्ति का आदर करते हैं। हे महाशय, आपका आचरण असामान्य है। निसंदेह कभी कभी तो मैं आपसे बोलते हुए डरता हूँ, किंतु समाज के आचरण से मेरी रक्षा करके मेरे ऊपर कृपा करें। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रिय हरिदास, तुम भयभीत मत हो। मैं प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों के अनुसार ही कड़ाई से व्यवहार करूंगा। अद्वैत आचार्य ने कहा, आपको खिलाना 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के समान है। अतएव आप यह श्राद्ध पात्र स्वीकार करें। इस तरह अद्वैत आचार्य ने उन्हें खिलाया। अद्वैत आचार्य सदैव इन विचारों में मग्न रहते थे कि संपूर्ण जगत के पतितात्माओं का किस तरह उद्धार किया जाए। उन्होंने सोचा, सारा जगत अभक्तों से भरा पड़ा है, उनका उद्धार किस तरह हो सकेगा। समस्त पतितात्माओं का उद्धार करने का दृढ़ संकल्प लेकर अद्वैत आचार्य ने कृष्ण को अवतरित करवाने का निश्चय किया। इस व्रत के साथ भगवान की पूजा करने के लिए वे गंगा जल तथा तुलसी दल अर्पित करने लगे। इसी तरह हरिदास ठाकुर गंगा के किनारे अपनी गुफा में कृष्ण का अवतरण कराने की दृष्टि से जप करते रहे। इन दोनों व्यक्तियों की भक्ति के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार के रूप में आए। इस तरह सारे जगत का उद्धार करने के लिए उन्होंने भगवान के पवित्र नाम तथा कृष्ण प्रेम का प्रचार किया। हरिदास ठाकुर के असामान्य व्यवहार से संबंधित एक अन्य घटना है, इसको सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। ऐसी घटनाओं को शुष्क तर्क किए बिना सुनो, क्योंकि ये घटनाएं हमारे भौतिक तर्क से परे हैं। मनुष्य को इन पर श्रद्धा पूर्वक विश्वास करना चाहिए। एक दिन हरिदास ठाकुर अपनी गुफा में बैठे थे और अत्यधिक उच्च स्वर से पवित्र भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे। पूर्णिमा की रात्रि थी जिससे गंगा की लहरें झिलमिला रही थी। सारी दिशाएं निर्मल तथा प्रकाशमान थी। स्वच्छ वेदी पर तुलसी के पौधे से युक्त गुफा की शोभा को जो भी देखता वह चकित रह जाता और हृदय में तुष्ट होता। उसी समय उस सुंदर परिदृश्य में एक स्त्री आंगन में प्रकट हुई। उसके शरीर का सौंदर्य इतना प्रकाशमान था कि सारा स्थान पीली आभा से भर गया। उसके शरीर की सुगंध से सारी दिशाएं महकने लगी और उसके गहनों की झंकार से कान झंकारित हो गए। वहां आकर उस स्त्री ने तुलसी को नमस्कार किया और तुलसी की परिक्रमा करके वह उस गुफा के दरवाजे पर आई जहां हरिदास ठाकुर बैठे थे। उसने हाथ जोड़कर हरिदास ठाकुर के चरण कमलों पर नमस्कार किया। फिर द्वार पर बैठकर वह अत्यंत मधुर वाणी में बोली, हे प्रिय मित्र, आप तो सारे जगत के मित्र हैं। आप इतने सुंदर तथा योग्य हैं। मैं यहाँ आपके साथ संग सुख लाभ के लिए आई हूँ। हे महोदय, आप कृपया मुझे स्वीकार करें और मेरे प्रति कृपालु हों, क्योंकि समस्त साधु जनों का स्वभाव है कि वे दीन तथा पतितों के प्रति कृपालु होते हैं। यह कहकर वह विविध हाव भाव प्रकट करने लगी, जिसे देखकर बड़े से बड़े दार्शनिक का भी धैर्य छूट जाता। हरिदास ठाकुर अविचलित थे, क्योंकि उनका संकल्प दृढ़ था। वे उस पर कृपालु होकर उससे बोले, मैंने प्रतिदिन निश्चित संख्या में नाम कीर्तन करने के महान यज्ञ व्रत की दीक्षा ले रखी है। जब तक जप करने का व्रत अधूरा है, तब तक मैं किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं करता। जब मैं अपना जप समाप्त कर लेता हूँ, तब मुझे दूसरा कुछ करने का अवसर मिलता है। तुम द्वार पर बैठ जाओ और हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनो। जप समाप्त होते ही मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। यह कहकर हरिदास ठाकुर ने भगवान के पवित्र नाम का जप जारी रखा। इस तरह उनके समक्ष बैठी वह स्त्री पवित्र नाम का जप सुनने लगी। इस तरह उनके जप करते करते सुबह हो गई, और जब उस स्त्री ने देखा कि सुबह हो गई, तो वह उठी और चली गई। इस तरह वह 3 दिनों तक हरिदास ठाकुर के पास आती रही और विविध स्त्री भंगिमाएं दिखलाती रही, जो ब्रह्मा के भी मन को विमोहित कर ले। हरिदास ठाकुर सदैव कृष्ण के विचारों में तथा कृष्ण के पवित्र नाम में मग्न रहते थे। इसलिए स्त्री ने जो भी भंगी माए प्रकट की, वे जंगल में रोने के समान थी। 3रे दिन की रात के समाप्त होने पर वह स्त्री हरिदास से इस प्रकार बोली, हे महोदय, आपने 3 दिनों तक झूठा आश्वासन देकर मुझे धोखा दिया है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आपका दिन रात चलने वाला यह नाम जब कभी समाप्त नहीं होने वाला है। हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरी प्रिय मित्र, मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैंने व्रत ले रखा है, तो फिर मैं उसे कैसे त्याग सकता हूँ। हरिदास ठाकुर को नमस्कार करके वह स्त्री बोली, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति माया हूँ। मैं यहाँ आपकी परीक्षा लेने आई थी। मैंने पहले ब्रह्मा तक के मन को मोहित किया है। अन्यों की बात जाने दें, केवल आपके मन को ही मैं आकृष्ट नहीं कर सकी। हे महोदय, आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। आपके दर्शन मात्र से तथा आपको कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते सुनकर मेरी चेतना शुद्ध हो गई है। अब मैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहती हूँ। कृपया हरे कृष्ण महामंत्र जप के आनंद के विषय में उपदेश देने की मुझ पर कृपा करें। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार होने से भगवत प्रेम रूपी सनातन अमृत की बाढ़ आ गई है। सारे जीव उस बाढ़ में बह रहे हैं। अब सारा जगत महाप्रभु का कृतज्ञ है। जो इस बाढ़ में नहीं बहता, उसे धिक्कार है। ऐसे व्यक्ति का करोड़ों कल्पों तक उद्धार नहीं किया जा सकता। पहले मुझे शिव जी से भगवान राम का पवित्र नाम प्राप्त हुआ था, किंतु अब आपकी संगति के फल स्वरूप मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। भगवान राम का पवित्र नाम निश्चय ही मुक्ति को देने वाला है, किंतु कृष्ण का पवित्र नाम भव सागर को पार कराने वाला तथा अंत में कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। कृपा करके मुझे कृष्ण नाम दीजिए और मुझे भाग्यशालिनी बनाइए, जिससे मैं भी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित भगवत प्रेम रूपी बाढ़ में बह सकूं। इस तरह कहकर माया ने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की पूजा की और उन्होंने तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो यह कहकर उसे दीक्षा दी। इस तरह हरिदास ठाकुर से उपदेश पाकर माया अत्यंत प्रसन्न होकर चली गई। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को इन कथाओं में श्रद्धा नहीं होती, इसलिए मैं उन कारणों को बतलाऊंगा कि लोगों को क्यों श्रद्धा करनी चाहिए। जो भी इसे सुनेगा वह श्रद्धालु बन जाएगा। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन आरंभ करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय ब्रह्मा जी, शिव जी तथा चारों कुमारों ने कृष्ण प्रेम द्वारा मुग्ध होकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया। महर्षि नारद तथा प्रहलाद जैसे सारे भक्त मनुष्य के रूप में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते, नाचते तथा भगवत प्रेम की बाढ़ में बहते हुए वहां आए। कृष्ण प्रेम से मुग्ध होकर देवी लक्ष्मी इत्यादि मनुष्य रूप में वहां आई और उन्होंने नाम प्रेम का आस्वादन किया। औरों की बात जाने दे, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण तक हरे कृष्ण कीर्तन के रूप में भगवत प्रेम का अमृत चखने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो इससे क्या आश्चर्य है यदि कृष्ण की दासी वही रंगा शक्ति माया भगवत प्रेम की याचना करती है। भक्त की कृपा के बिना तथा भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के बिना भगवत प्रेम संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में तीनों लोक भगवत प्रेम के संपर्क में आकर नाचते तथा कीर्तन करते हैं, यह उनकी लीलाओं का स्वभाव है। कृष्ण का पवित्र नाम इतना आकर्षक है कि सारे चर तथा अचर जीव एवं स्वयं भगवान कृष्ण तक जो जो इसका कीर्तन करता है वह कृष्ण प्रेम से पूरित हो उठता है। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का यह प्रभाव है। मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से वह सब कुछ सुना है जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में अपनी टिप्पणियों में अंकित किया है। मैंने उन लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया है। मैंने जो कुछ लिखा है वह श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से लिखा है, क्योंकि मैं एक तुच्छ जीव हूँ। मैंने हरिदास ठाकुर की महिमा के कण मात्र का वर्णन किया है। इसे सुनकर हर भक्त के कान तुष्ट हो जाते हैं। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्ण दास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला के अंतर्गत श्री हरिदास ठाकुर की महिमा शीर्षक तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।